कि नैसर्गिक सम्यक दर्शन भी गुरु को क्लेश करने वाला न होने से अर्थात गुरु को अधिक परिश्रम कराने वाला न होने से स्वाभाविक कहलाता है, किंतु गुरु के उपदेश के बिना प्राय वह भी नहीं होता है। देखो यहाँ निमित्त की प्रबलता बताते हैं कि हम अज्ञानी हैं, लेकिन गुरु ने हमें संबोधन दिया, शास्त्र की पंक्तियां दिखाई, तो हमने उस पर श्रद्धान किया। तो ये इस जन्म के अंदर तो है ही साक्षात्कार, लेकिन जो निसर्गज सम्यक दर्शन मतलब स्वभाव से सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, उसमें भी ये कहा कि नंबर एक तो पूर्व जन्म में किसी गुरु से उपदेश प्राप्त किया, उस जन्म में नहीं सम्यक दर्शन उत्पन्न हो पाया, तो अगले जन्म में उसका याद हो आया कि हाँ हमको गुरु ने ये पढ़ाया था, ये बताया था, हमने उस पर अमल नहीं किया था। तब इधर जब आने के बाद इस जन्म में सम्यक तो हो जाता है, तो उसमें वो पूर्व की देशना लब्धि काम आ जाती है। या इस जन्म में दूसरा कारण ये दिया कि देशना लब्धि किस प्रकार से, जैसे गुरु ने जरा सी बात बताई अपने को समझ में आ गई। दो तरह के शिष्य होते हैं, एक को तो बहुत डिटेल में बताना पड़ता है, और एक है कि जरा सा गुरु ने बताया और तुरंत समझ में आ गया। तो जो गुरु को ज्यादा बताने में कष्ट जिसमें नहीं उठाना पड़ता, परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और शिष्य समझ करके सम्यक्त को धारण कर लेते हैं, वह भी देशना लब्धि निसर्ग सम्यक दर्शन में मानी गई है। माने कि आप सब लोगों को भी इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का अधिकार है। भगवान के दर्शन करते करते एकदम परिणामों में निर्मलता आ गई, गुरु का उपदेश सुनते सुनते एकदम कहाँ था मैं, मेरी कितनी भ्रांत धारणाएं थी, ये सब सोच करके और गुरु उपदेश को ग्रहण करके और सम्यक दृष्टि बन जाते। समझो किसी ने अपने घर के अंदर पानी छान करके पीने का नहीं सोचा, कुछ लोग कह देते हैं फिल्टर पानी आता है, इसको छानने की क्या जरूरत है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि अनछने जल में जीव होते हैं, छने हुए जल को प्रयोग करना जैन धर्म में बताया है। अब पहली धारणा के कारण उन्होंने उस बात को नहीं समझा, गुरु ने उपदेश दिया तो हर घर के अंदर नल में छन्ना लग गया, तो क्या हुआ, ये गुरु के उपदेश के बल पर हमने उस शिक्षा को धारण किया। ऐसे अनेक शिविरों के अंदर देखा जाता है कि जब चाहे कोई विद्वान पंडित ही पढ़ाने ना जाए, चाहे कोई गुरु पढ़ा दें या विद्वान पढ़ा दें, उसके बाद बच्चों की डेली की प्रवृत्ति में बहुत फर्क आ जाता है। कितने शिविरों के बाद बच्चे धोती पहनना सीख जाते हैं, पूजन करना सीख जाते हैं, भगवान का अभिषेक करना सीख जाते हैं, तो ये क्या है, ये सम्यक्त की ओर बढ़ना है, सम्यक दर्शन की ओर बढ़ करके और जिन धर्म की प्रभावना में कारण बनता है। इसलिए आज भी इन निमित्तों को बनाया जाता है। समाज के लोगों का भी दायित्व रहता है कि अगर गर्मी की छुट्टियां हैं तो हम बच्चों को शिविर लगा करके उन्हें पाठशाला में पढ़ाएं, उन्हें भेजें ताकि ये संस्कार पढ़े। तो ऐसे संस्कार आज भी काम आते हैं और अगले जन्म में भी काम आते हैं। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं कि पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया, जरा सा अगर शेर को संबोधन प्रदान किया मुनियों ने कि हे मृगराज तू कहाँ हिंसा में पड़ा हुआ है, तू तो एक दिन अहिंसा का अवतार होने वाला है, एकदम सुनते ही उस शेर को पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया। अरे मैं तो ऋषभ देव भगवान का एक दिन पोता था, उनके साथ दीक्षा ली थी, भटक गया मार्ग और मैंने कितने दिन तक नरकों में दुख भोगे हैं, और अब ये मुनिराज मुझे संबोधन दे रहे हैं, वो एक हिरण को मार रहा था और मुनिराज के संबोधन से वैसा का वैसा छोड़ दिया, और छोड़ ही नहीं दिया, उसने आगे से नियम ले लिया, 5 अणु व्रत धारण कर लिए, जंगल के सूखे पत्ते खाने लगा। मुनिराज ने अन्य श्रावकों को कहा कि देखो अब ये शेर बिल्कुल श्रावक बन गया है, और सूखे पत्ते खा करके उसने जिंदगी के दिन निकाले और किसी भी जीव को मारता नहीं था। तो ऐसे पशु भी जब संबोधन को प्राप्त हो जाते हैं, तो पहले उसको जाति स्मरण हो गया पूर्व जन्मों का, आंखों से अश्रु धारा बहाने लग गया, आंसुओं के माध्यम से मुनिराज को बताने लग गया, हे मुनिवर, मैं आपके संबोधन को सुन रहा हूँ और मैं आपसे अनुव्रतों को धारण कर रहा हूँ, शांत भाव से बैठा। वरना अगर शांत भाव ना होता, उसकी वही प्रवृत्ति होती तो मुनि के ऊपर झपट करके उन्हें तो बल्कि खा जाता। तो ऐसे ऐसे तिर्यंच प्राणी भी संबोधन को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बने और सम्यक दर्शन का उपहार देने वाले तीर्थंकर आदि पदों को भी उन्होंने धारण कर लिया। तो इस पुस्तक के अंदर ऐसी तमाम धवला, जय धवला, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ वृत्ति आदि ग्रंथों का आश्रय लेकर बताया गया है कि इस कथन से तो निसर्ग सम्यक दर्शन में भी गुरु उपदेश विवक्षित है। मात्र इतना ही है कि वो गुरु के किंचित उपदेश मात्र से हो जाता है, गुरु को उसे समझाने के लिए अधिक उपदेश नहीं देना पड़ता है। जिसे बार बार उपदेश देना पड़ता है तो समझो उसका सम्यक दर्शन जो प्रकट होगा वो अधिगमज हो जाएगा। और बिल्कुल गुरु को मेहनत नहीं करनी पड़ी, जरासी में संबोधन को प्राप्त हो गया, मोक्ष मार्ग में लग गया तो समझो कि उसे निसर्ग सम्यक दर्शन हो गया। इसी प्रकार से सभी सम्यक दर्शनों में बाह्य कारणों की कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। अतः ये समझना चाहिए कि इन दोनों सम्यक्त के अंतरंग कारण समान होते हुए भी बाह्य कारणों के भेद से ही ये दो भेद हो गए हैं। अंतरंग कारण तो सबके ही है कि दर्शन मोनी का उपशम क्षय या क्षय उपशम होगा, अंदर की फैक्ट्री में जो हमें दिखेगा नहीं, और बाहर में हमें दिखेगा कि हमारे भाव पवित्र हुए हैं, हम देव साध गुरु पर श्रद्धान कर रहे हैं, या भगवान के दर्शन करते हुए या गुरु का उपदेश सुनते हुए हमें सम्यक दर्शन हुआ, तो ये सब बाह्य निमित्त हैं। इसीलिए देखो, हर बच्चे को सत्संग जरूर कराना चाहिए। बच्चों को आज आप टीवी दिखाते हैं, जन्म लेते ही मोबाइल पकड़ने लगते हैं और इंटरनेट की ओर चले जाते हैं, ऐसा सोशल मीडिया के अंदर डूब जाते हैं कि आत्मज्ञान और धर्म के ज्ञान से तो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों के अंदर भी अपना कर्तव्य है कि हम संस्कार भरे सत्संग जरूर कराएं। एक बार ऐसा हुआ कि एक सज्जन आए, बोले, माताजी, आज मैं बहुत पछता रहा हूं कि मेरा बेटा भाग गया और आज तक उसका कोई खबर ही नहीं है कि वो कहां गया। तो हमने कहा, इसमें पश्चाताप की क्या बात। बोले, हमने कभी उसे मंदिर के दर्शन नहीं कराए, हमने कभी गुरु के दर्शन नहीं कराए, गुरुओं के उपदेश नहीं सुनाए। तभी एक दूसरे सज्जन आ गए, वो कहने लग गए, मुझे एक बात अच्छी लगी कि हमने गुरुओं के उपदेश से जो जाना था, हमने गुरुओं का सत्संग कराया था, एक बार मेरा बेटा भाग गया तो थोड़े दिन में फलाने महाराज जी के यहाँ मिल गया। तो कम से कम जो भागा वो गुरु के पास तो पहुंचा, और जो गुरु के दर्शन ही नहीं करना जानता था वो भागा तो कहां भागा, हमेशा के लिए भाग गया, उसका अता पता ही नहीं है, और माता पिता कितने परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए सत्संग जरूर कराना। एक गुरु के आहार को देखने के लिए, इसलिए अनुमोदना करने के लिए भी प्रेरणा दी जाती है, आहार दे सको तो देओ, नहीं तो देखो। देखते देखते भी लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। एक बच्चे का हुआ ऐसे कि बच्चे को खिलाने के लिए माँ ने खीर बनाई, और माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुझे खीर खिलाऊंगी, मैं पानी लेने जा रही हूँ, और कोई महाराज जी आए तो उनको रोक लेना, मैं उनको पहले खीर खिलाऊंगी फिर तुमको खिलाऊंगी, तो खीर ज्यादा मीठी बन जाएगी। बच्चे ने कहा, अच्छा माँ, हम महाराज किसे कहते, उसे पता ही नहीं था, वो बाहर खड़ा हो गया। अब एक दिगंबर संत उधर से आए, उसने सोचा हो सकता यही महाराज हो, मेरी माँ कह रही थी कोई महाराज आए तो उन्हें रोक लेना। वो आगे बढ़ा, बोले, महात्मा जी, महात्मा जी, रुकिए, मेरी माँ ने कहा है कि आपको घर में ले जाना है, वो आपको खीर खिलाएगी, आप रुक जाइए। महाराज ऐसे कैसे रुक जाते, जैन संतों की विधि। वो रोकने की कोशिश कर रहा था, महाराज आगे आगे चल रहे थे, इतने में उसकी माँ आ गई, उसके सर पर पानी का घड़ा था, उसने समझ लिया कि बेचारा अज्ञानी बालक है इसलिए महाराज नहीं रुक रहे। उसने तुरंत कहा, हे स्वामी अत्र तिष्ठ आहार जल शुद्ध है। महाराज खड़े हो गए और उसने तीन प्रदक्षिणा दे करके प्रगहन किया, चौके में ले गई और आहार में खीर का आहार दिया। बच्चे से कहती है बेटा बाहर ही रहना, अंदर मत आना और इन्हीं गुरु को आहार देके हम तुमको खीर खिलाएंगे, बहुत अच्छी खीर लगेगी। बच्चा ताली बजाने लगा, ताली बजा बजा कर जय हो जय हो जय हो, माँ के कहने से वो जय हो कहने लगा। इतने में उसको इतना पुण्य बंद हो गया कि आगे जाकर वो धन्ना सेठ बन गया, समझे। आहार दान को केवल देखने मात्र से, और वे मुनिराज तो रिद्धिधारी मुनिराज थे, अक्षीण रिद्धि थी। उनको आहार देने के बाद उसने माँ ने बच्चे को खीर खिलाई। अब खीर का बर्तन ही ना खाली हो, अड़ोस पड़ोस को बुला लिया, सबको खीर खिला दिया, पूरे नगर को बुला दिया, सबको खीर खिला दिया। शाम तक वो बर्तन खाली ही नहीं हुआ, खूब अच्छे से बच्चे को खीर खिलाया, क्योंकि वो गरीब बच्चा था, उसको जल्दी कभी खीर नहीं मिलती थी। उसने खूब खीर खाया और खीर खाने के साथ साथ उसने ये जाना कि गुरु को देने के बाद जो खीर हमें माँ ने दी है, इसीलिए ये खीर इतनी बढ़ गई और आगे जा करके उसको कितना अच्छा फल मिल गया, धन्ना सेठ बन गया। जहां उसकी नाल भी गाड़ी गई, वहां भी रत्नों का घड़ा मिल गया। ऐसा ये जो है संबोधन, उद्बोधन, अनुमोदना, ये हमारे जीवन में काम करती हैं, ये सम्यक दर्शन को दृढ़ करती हैं। अब अनजान में भी उस बालक ने जो जय हो कहा, उससे ही उसको इतना पुण्य बंद हो गया। तो आप समझो, अनजान से जब इतना पुण्य मिला, तो जान करके जब दान देंगे, आहार देंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, वहां जाके दान देंगे, मंदिर बनवाएंगे, मूर्ति बनवाएंगे, गुरु का सत्संग करेंगे, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा, असीम पुण्य। इस पुण्य की तुलना कोई नहीं कर सकता, चाहे कितने ही आप दूसरों को दान दे दें या पैसे दे दें। गुरुओं को दान देने से, तीर्थ पर दान देने से, मंदिर में दान देने से जो पुण्य मिलता है, वो सम्यक सहित पुण्य होता है, वो मोक्ष मार्ग में कारण होता है। इसलिए एक एक पंक्ति के अंदर इन चीजों को भरा गया कि अंतरंग कारण, जब आप बाहर निमित्त मिलाओगे, अब आप यहाँ बैठे हो, उपदेश सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा तो लग रहा है। अब आपको ये अच्छा लगना ही ये बाह्य कारण है, और अंतरंग में इस अच्छे लगने से कर्मों का उपशम हो रहा है। जो खराब कर्म बनने चाहिए थे, अशुभ कर्म, वो शुभ में परिणत हो रहे हैं। तो ये अंदर की चीज हमें नहीं दिख रही है, लेकिन बाह्य निमित्तों से अंतरंग पर भी प्रभाव पड़ता है, तब अंतरंग और बहिरंग ये दोनों निमित्त अपने लिए कारण बन जाते हैं। तो इसलिए कहा कि अंतरंग कारण समान होते हुए भी बाहर कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी को दर्शन करके, किसी को दान दे के, किसी को आहार दे के, किसी को उपदेश सुन करके, ऐसे सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। और आगे पुनः कहते हैं कि पूर्व कथित जाति स्मरण आदि कारण इन पांच लब्धियों में गर्भित हैं। पांचों लब्धियां जो हैं, ये किसी न किसी रूप में गर्भित हो जाती हैं। इन पांच लब्धियों में से किसी एक के बिना सम्यक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनमें से पूर्व की चार लब्धियां तो कारण हैं और अंतिम लब्धि तो कारण है ही है, वो तो कारण ही है, उसके होने पर तो सम्यक दर्शन होना ही होना है। पूर्व की चार लब्धियों के होने पर सम्यक्त होवे ही ये नियम नहीं है, किंतु उनके बिना कभी भी सम्यक्त नहीं होगा। जो जिनको सम्यक दर्शन होना है, उनको इन सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग तक भी आना पड़ेगा, और फिर करण लब्धि के बाद हो जाएगा सम्यक दर्शन नियम से। तो इन चीजों की, एक एक चीज की उपयोगिता है। इस ग्रंथ को लिखने का कारण ये ही है कि जो लोग निमित्त को नहीं मानते, जो गुरुओं को महत्व तो नहीं देते, जो शास्त्र स्वाध्याय को महत्व तो नहीं देते, जो भगवान के दर्शन को महत्व तो नहीं देते, उनके लिए ये धौला आदि की पंक्तियां, लब्धि सार, तत्वार्थ, राजवार्तिक आदि पंक्तियों को निकाल निकाल करके पूज्य माता जी ने यहाँ पर संजोया है, रखा है कि इन एक एक पंक्तियों को बिल्कुल कंठ के अंदर विराजमान कर लो, ताकि कभी भी दिग्भ्रमित ना होने पाओ, वरना ऐसे ऐसे लोग देखे कि 7 प्रतिमा ले ली, कोई ने दीक्षा भी ले ली, लेकिन अगर एकांत पक्षियों के कहने में आ गए तो उनका संयम छूट गया, ऐसे सामने सामने देखा है, तो ऐसे भ्रमित मत होना। क्योंकि जो अधकचरे लोग होते हैं या जिन्हें दूसरे के उपकार की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, वे दूसरों को मोक्ष मार्ग से दूर कर देते हैं, अच्छी अच्छी मक्खन पॉलिश करके, अच्छी अच्छी बातें सुना करके, और उन्हें मोक्ष मार्ग से दूर कर देते हैं। और फिर जो लोग उससे च्युत हो जाते, वो कहते पंचम काल में तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं, पंचम काल में तो सच्चे साधु होते ही नहीं। अरे नहीं होते हैं तो आज 1800 पिच्छीधारी कहां से आ गए? यह कुंद कुंद आचार्य की वाणी के अनुसार ही तो आए हैं कि पंचम काल के अंत तक संत होंगे, भावलिंगी संत होंगे और सच्चे साधु होंगे, जिनसे मोक्ष मार्ग की परंपरा चलती रहेगी। इसलिए दिग्भ्रमित होना नहीं, इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ के एक एक पंक्ति को पढ़ना, हृदयंगम करना और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।